نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه ألف ألف مرة أما بعد تزكية تصفية إصلاح النفس الحمد لله ان ناموں سے ہم لوگ واقف ہیں کیونکہ اسی قسم کی مجالس اکثر ہماری ہوتی ہیں اور یہ مجلس بھی اسی سلسلے میں ہے بزرگان سے تعلق تو اسی سلسلے میں چند باتیں جو ذہن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں دراصل اس تزکیے کا اور تصفیہ کا اور اصلاح نفس کا جو ہم مطلب سمجھتے ہیں بعض حضرات عموماً کہ بھائی جو ہمارے اندر گند ہے برائیاں ہیں تو تزکیے کا مطلب یہ ہے تصفیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حضرت کے پاس گئے اپنے حضرت کے پاس شیخ کے پاس گئے بس فوراً جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے واش آؤٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے جیسے کسی آگ پہ انسان پانی ڈال دیتا ہے نا اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے ایک چیز بھی نہیں رہے گی جب یہ نہیں ہوتا آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے مقصد نہیں ملا جس مقصد کے میں گیا تھا یہ بڑی اہم چیز اور نقطہ ہے جس وقت میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کیونکہ آپ سب ماشاء اللہ اس لائن کے آدمی اسٹوڈنٹ ہیں طالب علم اس سلسلے کے ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی سارے رضائل جو ہمارے ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا کدھر غائب ہو گئے سب کے سب بس پھر تو فرشتہ بن جائیں گے ہم ہوا میں اڑتے پھریں گے ہمارا تو مطلب یہی ہوا کہ بھائی نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری نہ کچھ ہوگا نہ ہم گناہ کریں گے بس اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے ختم ایسا نہیں ہے بلکہ بات اصل یہ ہے کہ یہ رضائل جو ہیں یہی تو انسان کو ترقی دیتا ہے یہی ذریعہ ہے قرب الہی کا اگر یہ ختم ہو گئے تو قرب الہی کے مناظر ختم ہو جائیں گے آدمی کی وہ ذریعہ ختم ہو گیا تو پھر منزل کیسے ملے گی یہ تو ایک اللہ تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے رضائل کی شکل میں ہے بری چیز لیکن یہ راستہ ہے آپ کو کوئی دوست یا کوئی آدمی ہے اور آپ کے لیے بہت محنت کرتا ہے قربانی دیتا ہے تکلیفیں برداشت کرتا ہے مشکلات سہتا ہے تو وہ کیا ہوگا جیسے جیسے آپ کے لیے مشکلات سہے گا تکلیفیں برداشت کرے گا لامحالہ طور پر اس کی محبت آپ کے دل میں آئے گی یا نہیں آئے گی اور آپ کے لیے قربانی دے گا تو محبت پھر عشق میں تبدیل ہو جائے گا اور بھی کرے گا تو آپ کا محبوب بن جائے گا کیونکہ آپ کہیں گے تو میرے لیے بہت قربانی دیتا ہے میرے لیے تو سیکریفائس کرتا ہے اس نے مجھے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے میں اس کو کیسے بھول جاؤں تو میرا ہمدرد ہے میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا پھر آپ بھی اس سے اپنا محبوب بنائیں گے تو جب یہ رضائل جو ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس سے ایک چیز آنکھ بد نگاہی جب انسان اس بد نگاہی میں ایک گندی چیز ہے اور نفس اس کو ترغیب دے رہا ہے شیطان ابھار رہا ہے دیکھو بھائی کتنی خوبصورت ہے دیکھو بھائی کتنے مزیدار ہے اس کا کپڑے دیکھو اس کا رنگ دیکھو اس کی چال دیکھو پیچھے سے دیکھو آگے سے دیکھو اس کی شکل دیکھو اس کی آنکھیں دیکھو اس کی جوتی دیکھو ہزاروں طریقے سے جادو مارتا ہے ہزاروں طریقے سے نہیں نہیں ہم برائی تھوڑے دیکھ رہے ہیں تو ویسے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے واسطے یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم تو اللہ تعالیٰ کے شاہکار کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے خوبصورت نمونے بنائے ہیں ہم تو اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ये ऐसे ऐसे धोखों से इंसान की बदनिगाही की तरफ ले जाता है। लेकिन जो इंसान एकदम अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के हुक्म से या अल्लाह की मोहब्बत से अपने नफ्स को पकड़ता है, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करता है, तो ये एक ऐसी तजब्जब और कोशिश होती है इंसान की कि जिस वक्त वो कंट्रोल कर रहा होता है इस चीज़ को, उसको भी पता हो रहा है कि उसके अंदर कितना हलचल मची होती है, कितनी तकलीफ हो रही होती है, कितनी चीज़ों को कुर्बान कर रहा होता है, वो एक तूफान मचा होता है, क्योंकि ना कुछ को देखने वाला है, ना उसको रोकने वाला है, ना उसको समझाने वाला है, तनहा वो है और अंदर सारे जज्बात हैं, चाहे तो वही कर ले जो शैतान उसको कहता है, चाहे वो कर ले अनसीन, वो भी अल्लाह ताला को नहीं देख रहा, ठीक, अल्लाह ताला उसको देख रहा है, उसको यकीन है अल्लाह मुझे देख रहा है, और अल्लाह की खातिर क्या करता है, वो अपने आप को रोक लेता है। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी एक जंग होती है इंसान की नफ्स के साथ जो उस वक्त इंसान कर रहा होता है। जितने एक मिसाल दी है, तमाम बुराइयों को ये हाल होता है, इंसान तन्हा है, पूरा उसको ताकत है कि वो जना कर सकता है, ऐसे माहौल में भी है, पैसा भी है, जवानी भी है, सब कुछ उसके पास है और हालात भी उसके मौजूद होते हैं, लेकिन फौरन अल्लाह का खौफ उसको रोक लेता है। वो जो रुकना होता है, ये कोई आसान काम नहीं होता, किसी बुराई से तन्हा बैठा है, रात का वक्त है, चलो कोई भी नहीं देख रहा, चलो यार ये कोई चीज़ ऐसी लगा लेते हैं तो अब चीज़ नजर, हर चीज़ें, हर किस्म की चीज़ें आपको नजर आ सकती हैं सुबह तक, लेकिन क्या चीज़ है जो इंसान को रोकता है, कोई भी नहीं देखने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है, कल आप बिल्कुल वैसे ही जाएंगे, बिल्कुल मुंह साफ होगा और सबके सामने आप मस्वाक भी कर रहे होंगे, सुरमा भी पहना होगा और सीधे भी कर रहे होंगे, सलाम भी हो रहा आपको, अल्लाह तो सत्तार है, लेकिन वो रुक गया खौफ से अल्लाह ताला के, नहीं नहीं यार मुझे ये काम रात को नहीं, ये अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, वो कंट्रोल कर रहा है, तो सब पसीना उसको आ जाता है इस वक्त। ये एक बहुत बड़ी जंग होती है नफ्स के साथ इंसान की, मामूली चीज़ तो नहीं होती ना, जो इंसान इस हालत में गुजरता है। मुझे एक साथी क्या बड़ी प्यारी बात लगी उसकी, जिस तरह आप लोग को भी आते हैं मेरे पास बताते हैं हालात अपने, तो अच्छी बात लगी, कहने लगा हजरत बात दरअसल ये है कि तहज्जुद मुझ पे बहुत आसान होगी लेकिन नजर अगर रोकना बहुत मुश्किल काम है। होता ये है कि इबादत इंसान के लिए आसान हो जाती है, अभी रमजान आ रहा है, भूखे रहेंगे, अब तो लंबे रोजे हैं माशाल्लाह, 2 बजे शुरू होगा तो भूल जाएंगे खोलना किस वक्त है, याद नहीं रहता आदमी, खोलने का टाइम या रखने का टाइम है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद यूज्ड हो जाता है आदमी, उठता है, खाता है, इससे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में चलता है, एक दिन के बाद रूटीन हो जाती है। उस वक्त भी रमजान के अंदर जो रमजान की रूह रखी गई है, क्या कि अंदर की बुराई मत करना, गिबत मत करना किसी की, बदनिगाही मत करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, बदगुमानी मत रखना, ये रमजान की रूह है। आप देखें, क्योंकि इतनी सख्त मुजाहदे के बावजूद भी आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी इबादत कर रहा है, लेकिन शैतान उससे गिबत करा देता है, आंखों को फिसला देता है, जबान को हिला देता है, ठीक है ना। तो उस वक्त भी उसी इबादत के साथ इंसान जब कंट्रोल कर रहा होता है तो एक बहुत बड़े मुजाहदे के अंदर होता है, छोटी चीज नहीं, इसको कहते हैं तस्किया। अब क्या है कि ये जब हमने एक गुनाह को कंट्रोल किया, बर्दाश्त किया, उसमें क्या हुई, इंसान को सख्त तकलीफ हुई, इस सख्त तकलीफ हुई, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी, तो जब कोई आम आपका आदमी आपके लिए तकलीफ मुश्किल बर्दाश्त करता है तो आप उसको क्या बनाते हैं, महबूब। तो अल्लाह ताला के लिए जब कोई इंसान अंदर की तकलीफों को बर्दाश्त करता है, अपनी ख्वाहिशात का खून करता है, तो अल्लाह ताला कहता है अब तू मेरा महबूब बन गया। ये है तस्किया। तो अगर वही खत्म हो जाए बात कैसे हो, गुस्सा है, आप ये देखें गुस्से की हालत देखें, कितनी बुरी चीज है गुस्सा, इतनी बस गुस्सा ऐसी चीज है, आप नमाज पढ़ेंगे, बाहर किसी ने आपके जूते पे जूता रख दिया, वहीं सुनेंगे ये जबरदस्त लड़ाई हो रही है, क्या बात है जी मेरे जूते पे जूता क्यों रखा, इसकी जरूरत कैसे हुई, या चलते चलते आपका कंधा उससे लग गया, तो कोई आदमी पहले गुस्से में वो कहेगा तुम मुझे कंधा क्यों मारा, नमाज पढ़ के जा रहे हैं, सिजदा करके जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम करके जा रहे हैं, हजों पे देखें, उम्रों पे देखें, रमजान में भी हालात देखें, रोजा रखा होता है लेकिन मजा ले किसी कुछ चीज बर्दाश्त कर ले आदमी, गुस्सा है इतना सख्त इंसान के अंदर, कैसी कैसे जुर्म कर देता है, कैसी कैसी इंसान से हरकतें सरजद हो जाती हैं, तलाकें हो जाती हैं छोटी छोटी बात में, घर में लड़ाई हो जाती है, दोस्तियां टूट जाती हैं, عرصے کی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، غصہ اندر ہے لیکن یہی غصہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن کے اندر فرماتے ہیں، یہ دیکھیں غازمین ہو گئے، یہ غصہ اگر کوئی غصے کو پی جائے، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، وہ لوگ جو سب برداشت ہی نہیں کرتے بلکہ کیا ہے اپنے بندوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، صرف معافی نہیں کرتے بلکہ کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان پہ احسان بھی کرتے ہیں، احسان بھی کر دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے اتنی چیزیں کرتے تو پھر بات ہے واللہ یحب المحسنین، جب یہ اتنے غصے والا آدمی جب یہ کام کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے میرا محبوب بن جاتا ہے، یہ غصہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا نا ختم تو نہیں ہوتی چیز تو وہی موجود ہے، تو بات یہ ہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غزائل ہیں انسان کے، تصفیہ تزکیہ اصلاح نفس سے کیا ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتے بلکہ یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہی غصہ جو ہم غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہی غصہ اللہ کے راستے کے اندر وہ بہترین چیز بن جاتا ہے اور انعام بن جاتا ہے، جب غصہ وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ کرے گا، کسی حق چیز پہ کرے گا، کسی جائز چیز پر کرے گا تو کیا ہوگا، وہ انعام اللہ کا بن جائے گا، غصہ موجود ہوتا ہے لیکن غصہ کیا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ہر عیب جو انسان کا ہے وہ غزائل جو ہے وہ حمیدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جس کے غزائل حمیدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے، تو جانے کا مطلب یہ ہے اللہ والوں کے پاس، نیک انسان کے پاس، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت انسان کی بنتی ہے کہ یہ تمام چیزیں کنورٹ ہو جائیں، یعنی برائی اچھائی میں بن جائے، وہی صفت اچھی بن جائے، یہ کہاں ملتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں حقیقت میں کہاں سے نصیب ہوں گی آپ کو، اللہ اکبر، یہ اہل اللہ کی صحبت سے نصیب ہوتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، کہ کسی کتابوں سے آپ سے نہیں ملیں گی، کسی کورس پر نہیں ملیں گی، بلکہ یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی صحبت میں سے یہ نصیب ہوتی ہے، اور یہی تزکیہ اور تصفیہ ہے، اس لیے لوگ اللہ والوں کے مجالس میں جاتا ہے، ان سے دوستی رکھتا ہے، اس کو اصلاحی تعلق کرتے ہیں، اگر ہمارا یہ کام الحمدللہ ہمارے گناہ ختم ہو رہے ہیں، ہمارے اندر برائیاں ختم ہو رہی ہیں، ہماری جو برائیاں ہیں وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، کبھی جو ناک میں غصہ تھا اب انسان دیکھتا ہے اتنا حلیم ہو گیا، یہ غصہ کیا شکل اختیار کر گیا، انعام رکھا اللہ پاک نے اسے پاک نہیں دیکھا، جامع صغیر میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر اپنے غصے کو پی جاتا ہے، غصہ آ رہا ہے لیکن فرق کیا ہے، پہلے غصہ آتا ہے چیڑ پھاڑ کر دیتا، توڑ دیتا کھڑکیاں، برتن توڑ رہے ہیں گھر کو، لیکن جب تبدیل ہوا اور تبدیل ہونے کے بعد سخت سے سخت غصہ اس کو آ رہا ہے، لیکن کیا اللہ کے خوف سے اس میں وہ طاقت کنورٹ کرنے کی عادت پڑ گئی، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا فرق پڑے گا کہ وہ غصہ چینج ہو جائے گا، اور کیا کرے گا کہ وہ غصے کو برداشت کرے گا، پی جائے گا، وہی شخص ہوگا تو یہ کرتا تھا آپ کیا ہے غصے کو پی جائے گا، تو جامع صغیر میں حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایسا شخص جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے اور سکون سے بھر دیتا ہے، جینا میں اللہ مسلم میں، اب کتنا بتائیں غصہ بری چیز ہے، اچھی چیز ہے غصہ، واقعی اچھی چیز بن جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی نے اس کو صحیح کر دیا، جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے تو سرکش گھوڑا بھاگ رہا ہے، کسی نقصان کر رہا ہے، لیکن جب وہی کسی ٹرینی کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کو ٹرینڈ کرتا ہے، اس کو چلانا سکھاتا ہے، اس کو ٹرینڈ کرتا ہے، تو اسی گھوڑے پہ انسان بیٹھ کے سواری کرتا ہے، اس معمولی سا اس کی رینج جو ہے اس کو ہلاتا ہے، اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، کتنا بڑا گھوڑا قابو آ جاتا ہے انسان کے، تو نفس پہ اسی طرح انسان خود نہیں کر سکتا قابو، جب تک نفس کسی کے حوالے نہ کرے انسان، کسی انسان کے حوالے نہ کرے گا حضرت یہ ہمارے نفس تو برباد کر دیا ہے، اس کو ہمیں صحیح کریں، تو یہی غصہ جب صحیح ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان اور سکون بھر دیتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جو غصہ اندر تھا وہ غصہ سارا کا سارا نور ہی نور بن جاتا ہے اس کے اندر، سارا غصہ کتنی اچھی چیز بن گئی، غصہ صرف کیا اس کو ٹرین کر دیا گیا، اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کی حیت کو بدل دیا گیا، رحمانی کے اندر اس طرح ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت میں اعلان کریں گے کہ بھائی کون ہے ایسے بندے، کون ہے ایسے انسان جن کے حق مجھ پر ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا، खड़े हो जाओ, जिनका हक मैंने देना है वो खड़े हो जाओ, कोई मुझमें नहीं खड़ा होगा। सिर्फ वो लोग खड़े होंगे, वो कहेंगे या अल्लाह कौन लोग हैं वो, अल्लाह ताला कौन लोग हो तुम जो तुम्हारा मेरा हक है, या अल्लाह हम वो लोग हैं कि जब लोग हम पे जुल्म करते थे हम उनको माफ कर देते थे तेरी खातिर, सिर्फ तेरी खातिर। तो इतना मुकाम इंसान का रोज़ क़यामत में हो जाएगा, गुस्सा है, गुस्सा वही चीज़ें देख रहे हैं। तो ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या है, खुद हम नहीं कर सकते, बुराई को ख़त्म करने के कन्वर्ट करने के लिए हम नहीं कर सकते, अपनी नफ्स को हमें किसी के हवाले करना पड़ता है, यही तस्की है, यही तस्की है। इसीलिए इंसान जो है अल्लाह वालों के पास जाता है, अल्लाह वालों की सोबत को अख्तियार करता है, उनके पास बैठता है, ये मुजाहिदा है इंसान को। इसमें सब मुजाहिदा क्या है कि किसी अल्लाह वाले की सोबत को अख्तियार करे, ये मुजाहिदा। किताबों से नहीं मिलेगा आपको, किसी कोर्स से नहीं मिलेगा, किसी जगह से हासिल नहीं होगा, हासिल होगा तो कहाँ होगा, अल्लाह वालों की सोबत से होगा। ये वो लोग हैं जिनके तजुर्बे हैं, मास्टर हैं, हकीम मोहम्मद हस्तानी रहमतुल्लाह, किसी ने तहरीर किया उनके किसी मुरीद ने कि हजरत गुस्सा बहुत है, जैसे करते हैं लोग बताते हैं अपने शेख को अपनी बीमारी, हजरत गुस्सा बहुत है और कंट्रोल नहीं होता, इस गुस्से ने तो मुझे तबाह करके रख दिया, बाकी बहुत बुरी चीज है, इस गुस्से ने मुझे तबाह कर दिया, इतना नुकसान मुझे अब तक हो गया इस गुस्से से कि मैं इसके बहुत परेशान हूं, इस चीज से कुछ इलाज करें इस गुस्से का मुझ पर। तो हजरत ने इलाज किया, कहते भाई सब करो लखनऊ में जो दुकान है अनवार बुक डिपो, वहाँ पर जाओ, मोहम्मद हुसैन है वो मालिक है उसको, उनके पास जाकर मेरी तरफ से जाओ, सलाम बोलो और वहाँ सोबत अख्तियार करो, उनके साथ बैठा करो। हुक्म था हजरत, चले गए, वहीं रहते होंगे। कुछ अरसे के बाद खत आया वापस, हजरत मेरे तो गुस्से का पता ही नहीं कहाँ चला गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तो नजर ही नहीं आता, इतना हलीम हो गया हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं यार तुम तो वो आदमी नजर ही नहीं आते, तुम तो तब्दील हो गए हो, तुम तो बात बात पे लड़ने के लिए आते थे, ये क्या था। हालांकि उन्होंने तो मुझे ना कोई नसीहत की है, ना उन्होंने मुझे कभी वो तकरीर की है, ना उन्होंने कोई किताब पढ़ाई है, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया है, ये मैं किस तरह तब्दील हो गया, क्या वजह कहती हजरत इसकी। हजरत ने जवाब दिया कि भाई बात वैसे ये थी कि जिनके पास मैंने तुम्हें भेजा था वो बड़े हलीम थे, बड़े साबिर थे, बड़ा दिल उनका नरम था, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, तो जब तुम उनके पास से बैठे तो सारी सिफात तुम्हारे कल में मुनकस हो गई उनकी। तो ये एक चीज है अल्हम्दुलिल्लाह सही अपना इंसान को सही करने के लिए कि अल्लाह वालों के सुख। ये सिर्फ पीरी मुरीद का ताल्लुक नहीं होता, ये कोई ऐसी चीजें जो लोगों ने बनाई हैं उससे लोग घबराने लगे हैं इस लाइन से, क्योंकि इसमें रसूमात बहुत आ गई हैं और चीजें बहुत आ गई हैं, मामलात कुछ इतने खराब हो गए हैं, लोग भी डरने लगे हैं पीरों से, भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हासिल यह है कि लाइन यही है इंसान को इस्लाह करने के लिए, जैसे आप हजरात माशाल्लाह इस कोशिश में है, तो इसका एक पैमाना है बड़ा अच्छा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जाते हैं जिक्र खास करते हैं अपना, वहां पर हंस के पास बैठते हैं, हमारा तो थोड़ा सा एक प्रोग्राम भी चलता है देखने के लिए, उसमें आप लोग सुस्ती करें तो आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसमें इंसान अगर आखिरत का फिक्र हो, इंसान सबसे बड़ी चीज जिसको आखिरत का फिक्र है, पता है कि कल रोज़े क़यामत में ये क्या बलाएं बन के निकलेंगी, कीमत क्या, कैसा गुना है आपको सोचा, ये कितना बड़ा गुना है, सौ से बड़ा गुना लगता है। ये किसी को झूठ कहना, किसी पे इल्जाम लगाना, किसी पे चुगली करना, किसी बदगुमानी करना, हम ये इन इबादों को कहां लेकर जाएंगे जबकि कुछ भी नहीं होगा इंसान के पास इन गुनाहों की वजह से, लेकिन हम इतने बेखबर हैं, इतने बेखबर हैं कि कभी एहसास ही नहीं होता कि अभी हम इसमें जाए, नफ्स इतना मोटा है, नफ्स इतना मोटा है कि किसी के आगे जाने को दिल नहीं करता हमारा, नहीं नहीं ये तो हमारे काबिल आदमी नहीं है, हम इसके पास कैसे हैं, नहीं ये हमारे स्टैंडर्ड आदमी नहीं, कोई मशहूर आदमी होना चाहिए, कोई बड़ा आदमी होना चाहिए ताकि पता चले हम भी बता सकेंगे कि हम उनके मुरीद हैं, बेशक वो यहाँ ना हो, बहुत दूरी रहते हो, लेकिन ताल्लुक उनसे पैदा कर लेंगे। हकीकत यह है, ताल्लुक का मामला ये होता है कि जितना नज़दीक डॉक्टर आपके पास होगा, जितना नज़दीक आपका हकीम आपके पास होगा, उतनी जल्दी आपका इलाज होगा। यहाँ आप डॉक्टर ढूंढते हैं क्या, ये ढूंढते हैं क्या, दो मील 10 मील पर जाना पड़े आप, इत्तेफाक से मेरी तरह फंस जाए दूसरी बात है, लेकिन यह है कि अक्सर लोग तो ये हैं कि ये सोचते हैं कि तो जीपी हमारे नज़दीक हो ताकि हम जाएं और जल्दी देखें, यही होता है ना। तो ये अल्लाह वालों हम इतने दूर की तलाश करते हैं, और फिर जब अल्लाह ने सिस्टम रखा है तो यकीनन अल्लाह सुभान ने हर जगह इसका इंतजाम किया ही होगा, जरूर किया होगा। इंसान अपने हुस्न ज़न के साथ जाकर किसी के पास बैठे और किसी को समझे कि भाई वाकई मेरा इलाज कर सकता है, उनके साथ ताल्लुक रखे, और फिर ताल्लुक सही रखना चाहिए, ये नहीं कि भाई बस ऐसे ही हो, फिक्र हो, कि ये जो चीज है बहुत अहम चीज है, बड़ी जरूरी चीज है। तमाम हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने इसको फर्ज कहा है, फर्ज ऐन कहा है इस्लाह नफ्स को। देख रहे हैं आप उनकी किताबों, हकीम उम्मत उनको कहा जाता है। तो हम इस पे फर्ज नमाज तो पढ़ लेते हैं, फर्ज रोजे भी रख लेते हैं, फर्ज हज भी कर लेते हैं, तो फर्ज इस्लाह क्यों, इस्लाह नफ्स क्यों नहीं करते, जो कि जड़ है हर चीज की। इसकी तरफ सोचें, गौर करें कि भाई ये बहुत सी चीजों से इंसान को निकाल देगी। कल जो कब्र में सबसे चीज हमारे काम आएगी वो इस्लाह इंसान की काम आएगी कि साहब ठंडा बिल्कुल इंसान अंदर से चीज निकली हो। निकलने से मुराद क्या कि यही इनाम दे रहे हो आपको, ये यही गुना हमारे हमारे दराजात को बुलंद करा रहे हैं जो अंदर अल्लाह ने डाले हैं। ये गजाइल जो है हमारे हमीदा बने इसी अल्लाह वाले के पास जाने के लिए। इसका बड़ा बेहतरीन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तजिया करने का है कि वाकई भाई हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, उसके लिए सब ये देखना। ये नहीं कि जी मैं अभी 10,000 तस्वीर करता था, 15,000 कर रहा हूँ, अगले दफा 15,000 करता था, मैं 30,000 तस्वीर कर रहा हूँ, अब जी मैं 10वें सबक में हूँ। सबक लेने का बड़े शौक है, अगला सबक तो है ही नहीं, सबसे बड़ा सबक तो एक ही है जो दे दिया अल्लाह का, उससे बड़ा और क्या सबक है। इनसे दराजात बुलंद नहीं होते, इनसे दराजात बुलंद नहीं होते। आदमी दराजात बुलंद किससे होते हैं, आदमी में खौफ है, उसकी नीयत सही है, अल्लाह ताला से खौफ रखता है, अपनी सलाह चाहता है, अल्लाह के खौफ से गुनाहों को छोड़ना चाहता है, वो मजबूर है, उसे जना नहीं छूट रहा, आंखों का जना नहीं छूट रहा, बुराई नहीं छूट रही, चर्स नहीं छूट रही, शराब नहीं छूट रही, धोखा नहीं छूट रहा, फ्रॉड नहीं छूट रहा, दुनिया की मोहब्बत नहीं छूट रही, बस पैसा 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 पैसा, हजारों करोड़ों बीमारी में इंसान डूबा होता है, लेकिन कहीं नहीं सोच रहा कि मैं जाऊं और किस तरीके से इनसे अपने छुटकारा हासिल करूं। किस तरह इंसान बिस्तर पे इतने गंदों के साथ लेट जाता है, इतने गुनाहों के साथ कैसे इंसान अपने लिहाफ को ओढ़ के खराटे लेने लगता है, ताज्जुब की बात है कि जरा फिक्र ही नहीं होता कि इस कदर गलाजत के साथ इंसान जो है वो बिस्तरों में जा रहा है, जिंदगी को गुजार रहा है। कहीं तो कहीं एक होता तो इंसान मारे, एक दफा तो सोबत अखेज किसी शेख के कहीं कुछ गुना जड़े इंसान के, कितने अफसोस की बात है। तो इसका खास ये ख्याल रखें कि भाई ये मतलब ये नहीं कि इतने हजार तस्वीर कर ली, इतने हजार हमने जिक्र कर लिए या इतने हमारे दर्जात बुलंद हो गए, कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज देखें जिस मकसद के लिए गए कि भाई मेरा कोई गुनाह निकला या नहीं निकला, गुस्से में कोई कमी आ रही है या नहीं आ रही, किसी से माफी मांगने को दिल करता है या नहीं करता, किसी से बदला लेना चाहता था बदला छोड़ रहा हूं या नहीं छोड़ रहा, किसी का माल खाया तो मैं देना चाहता हूं या नहीं देना चाहता हूं, किसी की मैंने गीबत की थी मैं गीबत देना छोड़ना चाहता हूं या नहीं चाहता, उसकी इबादतों को खत्म कर दे, उसको मफलूस कर दे हर चीज से। क्योंकि एक भाई को धोखा देना, उसकी कॉन्फिडेंस को हिलाना कितनी बड़ी चीज है। हाँ दुश्मनी है सामने आए इंसान तो हम दुश्मनी करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे दुश्मनी करना, गीबतें करना, चुगलियां करना, गंदी बातें करना, ये तो गुनाह दर गुना है। तो ये ऐब इंसान में होते हैं ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें कहा है अल्लाह वालों के पास जा रहे हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, तो हमें कम से कम सोचना चाहिए कि भाई हमारे गुनाह खत्म हो रही है नहीं हो रहे, या हम इनसे जान छूट रही है छूट रही, नहीं तो फिर इस पर और सदा करें अल्लाह ताला से, और गिरिया करें और सोबत अख्तार करें शेख के साथ जाकर। तो यह है, इसका नाम है तस्किया कल्ब और तस्किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की नहीं, ये तो सदियों से जो अल्लाह ताला ने की हमें नबी करीम सम तशरीफ लाए, तो ये लेकर जो अलम किताब अल हकमता युजक्की है, साथ ही लेके आए थे तीलम कुरान भी, हिकमत भी और तस्किया, ये तीन चीजें आप ही की हैं, आप ही की विरासत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही की विरासत है कि जो आज तक ये चलेगी और क्यामत तक चलती रहेगी, और इंशाल्लाह इससे हमारी जिंदगियां मुनव्वर होती जाएंगी और हमारी कब्रें जो हैं वो मुनव्वर होंगी और आखिर हमारी सजाएं भी कम होंगी। इस चीज़ से अल्लाह पाक हमें हर चीज को समझने की तौफीक नसीब हो। हम जिक्र करते हैं क्योंकि वक्त कम होता है, तो जिक्र खामोश करेंगे, मेरे साथ खामोश कलमात पढ़े हैं, इंशाल्लाह गलियों में से जिक्र चलेगा।